चैप्टर 39 दंत्य स भाग 4 साम्यवाद। वह सिद्धांत जो शोषण और शोषित, शासक और शासित, पूंजीपति और श्रमिक के भेद को मिटाकर समाज व्यवस्था में समता की प्रतिष्ठा पर विश्वास करता है, वह शब्द कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की विचारधारा के लिए रूढ़ हो गया। इनके कृतियों में साम्यवाद और समाजवाद दोनों का प्रयोग प्रायः एक ही अर्थ में हुआ। लेनिन ने 1918 से अपने दल को साम्यवादी कहना आरंभ किया, तब से मार्क्सवाद और साम्यवाद पर्याय हो गए। मार्क्सवादी हर व्यक्ति से उसकी योग्यता के अनुसार काम लेने और उसकी आवश्यकता के अनुसार पारिश्रमिक देने में विश्वास करता है। उदाहरण, अतः एक और तो यूरोप में मशीनों की सभ्यता के विरुद्ध टॉल्स्टॉय की धर्म बुद्धि जगाने वाली वाणी सुनाई पड़ी, जिसका भारतीय अनुवाद गांधी जी ने किया। दूसरी ओर इस घोर आर्थिक विषमता की प्रतिक्रिया के रूप में साम्यवाद और समाजवाद नामक सिद्धांत चले, जिन्होंने रूस में अत्यंत उग्र रूप धारण करके भारी उलटफेर कर दिया। हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ संख्या 645। साहचर्य कृत विरोध। दो स्वतंत्र रसों या समान बल रसों का साहचर्य सहाभिव्यंजन से उत्पन्न विरोध ही साहचर्य कृत विरोध है। उदाहरण, जो प्रबंध पटु कवि होगा, वह एक भाव ही पूर्ण रस में व्यंजना हो जाने पर प्रसंग की स्वाभाविक गति के अनुरूप से दूसरे विरुद्ध भाव के आने के पहले कुछ अंतर आप से आप डालेगा। इस दृष्टि से नैरंतर्य कृत विरोध का विचार एक प्रकार से अनावश्यक ही समझिए, अतः आगे जो कुछ कहा जाएगा उसे साहचर्य कृत विरोध के संबंध में ही समझना चाहिए। रसमीमांसा, पृष्ठ संख्या 249। साहित्य। व्यापक अर्थ में साहित्य राग दीप्त एवं संवेदनशील मानव जाति के विचारों एवं भावों की समष्टि है। व्युत्पत्ति के आधार पर साहित्यो शब्दार्थयो भाव साहित्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का स्वभाव ही साहित्य है। संस्कृत साहित्य में साहित्य शब्द काव्य का समानार्थक है, इस प्रकार उसे मार्मिक एवं रागात्मक अनुभूतियों की सौंदर्यमयी अभिव्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है, और हम कह सकते हैं कि हृदय की रागात्मक प्रवृत्तियों की चमत्कार पूर्ण या सौंदर्यमयी अभिव्यक्ति ही साहित्य है। आचार्य शुक्ल अपनी साहित्य संबंधी अवधारणा में कुछ न कुछ संशोधन परिवर्तन करते रहते हैं। फैजाबाद के प्रांतीय साहित्य सम्मेलन में अपने पठित भाषण में उन्होंने साहित्य की जाति विशेष की रक्षित वाणी की उस अखंड परंपरा के रूप में देखा, जो उसके स्वतंत्र स्वरूप की रक्षा करती हुई युग के अनुकूल उसका उत्तरोत्तर विकास करती चलती है। उदाहरण, साहित्य के अंतर्गत वह सारा वांग्मय लिया जा सकता है जिसमें अर्थबोध के अतिरिक्त भावोन्मेष तथा चमत्कारपूर्ण अनुरंजन हो, तथा जिसमें ऐसे वांग्मय की विचारात्मक समीक्षा या व्याख्या ही हो। चिंतामणि भाग 2, पृष्ठ संख्या 159। उदाहरण, साहित्य किसी जाति की रक्षित वाणी की वह अखंड परंपरा है जो उसके जीवन के स्वतंत्र स्वरूप की रक्षा करती हुई जगत के गति के अनुरूप उत्तरोत्तर उसका अंतर विकास करती है। उसके भीतर प्राचीन के साथ नवीन का इस मात्रा में और इस सफाई के साथ मेल होता चलता है कि उसके दीर्घ इतिहास में कालगत विभिन्नताओं के रहते हुए भी यहाँ से वहां तक एक ही वस्तु के प्रसार की प्रतीति होती है। चिंतामणि भाग 3, पृष्ठ संख्या 239। साहित्य का इतिहास। राग दीप्त एवं अनुभूति समृद्ध मानव जाति की रमणीय शब्द विधान के माध्यम से व्यक्ति चेतना के देश कालबद्ध स्वरूप का सामाजिक संदर्भ में क्रमबद्ध विश्लेषण ही उसके साहित्य का इतिहास लेखन है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन अवश्यंभावी है। अतः जनता की चित्तवृत्तियों की परंपरा के साथ साहित्य की परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही साहित्य कहलाता है। उदाहरण, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब वह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि में अंत तक उनकी चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। साहित्य शास्त्र। साहित्य के स्वरूप और सौंदर्य का विवेचन करने वाला शास्त्र रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि आदि सभी काव्य संप्रदाय साहित्य शास्त्र के भीतर काव्य सौंदर्य का उद्घाटन करने वाले संप्रदाय हैं। इन सबको मिलाकर भारतीय साहित्य शास्त्र की अवधारणा पूर्ण होती है। भारतीय साहित्य शास्त्र अत्यंत गंभीर और प्रौण समझा जाता है। आचार्य शुक्ल शास्त्र को काव्य के मर्म का प्रौण समझने का साधन मानते हैं। उदाहरण, जैसा कि हम पहले कह आए हैं कि साहित्य के शास्त्र पक्ष की प्रतिष्ठा काव्य चर्चा की सुगमता के लिए माननी चाहिए, रचना के प्रतिबिंब के लिए नहीं। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 94। सिजद, ईश्वर के आगे श्रद्धा व सर झुकाना ही सिजद कहा जाता है। उदाहरण, शायर लोग खुदा खुदा करना और बुतों के आगे सिजद करना दोनों बराबर ही समझने लगे। जैसे ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 146। सिद्धांत मार्ग, नियमबद्ध संप्रदाय, निश्चित विधि निषेध के भीतर बंध कर चलने वाला मार्ग सिद्धांत मार्ग है। उदाहरण पर किसी वाद के साथ संबद्ध करके उसे रहस्य भावना को हम काव्य का एक सिद्धांत मार्ग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 121। सिद्धावस्था, आनंद मंगल के सिद्धि या आविर्भूत स्थिति की अभिव्यक्ति माधुर्य, सुख, सूषमा, विभूति, उल्लास, प्रेम आदि के चित्रण द्वारा होती है। जो काव्य इस प्रकार की स्थितियों के चित्रण को महत्व देते हैं वे सिद्धावस्था को लेकर चलने वाले काव्य हैं। आर्य सप्तसती, गाथा सप्तसती, सूर सागर, बिहार सत्सई, रीतिकालीन कवियों की स्फुट रचनाएं सिद्धावस्था या उपभोग पक्ष को महत्व देने वाली हैं। उदाहरण, कुछ कवि और भक्त जो जिस प्रकार आनंद मंगल के सिद्ध या आविर्भूत स्वरूप को लेकर सुख सौंदर्य में माधुर्य, सुषमा, विभूति, उल्लास, प्रेम, व्यापार इत्यादि उपभोग पक्ष की ओर आकर्षित होते हैं, उसी प्रकार आनंद मंगल की साधनावस्था या प्रत्यक्ष पक्ष को लेकर पीड़ा, बाधा, अन्याय, अत्याचार आदि के दमन में तत्पर शक्ति के संचरण में भी, उत्साह, क्रोध, करुणा, भय, घृणा इत्यादि की गतिविधि में भी पूरी रमणीयता देखते हैं। वे जिस प्रकार प्रभाव को फैला हुआ देखकर मुग्ध होते हैं, उसी प्रकार फैलने के पूर्व उसका अंधकार को हटाना देखकर भी यही पूर्ण कवि हैं, क्योंकि जीवन की अनेक परिस्थितियों के भीतर ये सौंदर्य का साक्षात्कार करते हैं। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 56। सिनेकडाकी, जहां अंश के लिए पूर्ण अथवा पूर्ण के लिए अंश का प्रयोग होता है, वहां सिन एक डाकी अलंकार होता है। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ होल इज पुट फॉर अ पार्ट ऑफ वाइस वर्सा। उदाहरण, यूरोपीय अलंकार शास्त्र में आधेय के स्थान पर आधार के कथन की प्रणाली को मेटानमी अलंकार कहते हैं। इसी प्रकार अंगी के स्थान पर अंग, व्यक्ति के स्थान पर जाति आदि का लाक्षणिक प्रयोग सिनेक डॉकी अलंकार कहा जाता है। जैसे ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 120। शुक्र, सूफी साधकों को जब परमात्मा के प्रेम का अहंकार हो जाता है तो वह शुक्र की अवस्था में होते हैं। उदाहरण, इस हाल या प्रलयावस्था के दो पक्ष हैं, त्याग पक्ष एवं प्राप्ति पक्ष। त्याग पक्ष के अंतर्गत फना, फकद और शुक्र। जैसे ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 143। सुषुम्ना, मेरुदंड या रीढ़ के भीतर से शिव स्थान तक जाने वाली अत्यंत सूक्ष्म नाड़ी, उसे ब्रह्म नाड़ी भी कहते हैं। उदाहरण, मेरुदंड या रीढ़ की बाईं ओर इला और दाहिनी ओर पिंगला नाड़ी है, इन दोनों के बीच सुषुम्ना नाम की नाड़ी है। जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 62। सूक्ति, सुंदर उक्ति, चमत्कार उत्पन्न करने वाला कथन, पशु पक्षियों की चेष्टा आदि से व्यंजित होने वाले सहज भावों की व्यंजना ग्रहण न करके जब कवि चमत्कार उत्पन्न करने के लिए उनकी चेष्टाओं पर अपनी ओर से भावों एवं तथ्यों का आरोप कर लेते हैं तो उनके कथन सूक्ति बन जाते हैं। उदाहरण, जो उक्ति केवल कथन के ढंग से अनूठेपन, रचना, वैचित्र, चमत्कार कवि के श्रम या निपुणता के विचार में ही प्रवृत्त करती है वह है सूक्ति। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 37। उदाहरण, कौवे सबेरा होते ही क्यों चिल्लाने लगते हैं, वे समझते हैं कि सूर्य अंधकार का नाश करता बढ़ा आ रहा है, कहीं धोखे में हमारा भी नाश न कर दे। यह सूक्ति मात्र है, काव्य नहीं। सूक्ष्म भावना एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त भावना, ऐसी भावना जो इंद्रियों को सीधे प्रत्यक्ष न हो। उदाहरण, सूक्ष्म भावना के मूर्त प्रत्यक्षीकरण का विधान लक्षणा द्वारा भी होता है और साध्य वसान रूपक द्वारा भी। चिंतामणि भाग दो पृष्ठ संख्या 66। सूफी संसार से विरक्त और परमात्मा के प्रेम में मग्न रहने वाले रहस्य साधना में लीन मुसलमानी फकीरों की सूफी कहा जाता है। सूफ उन को कहते हैं संसार त्यागी रहस्य साधकों को उनका अधिक व्यवहार करने के कारण सूफी कहा गया। उदाहरण, सूफियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेम सूत्र में बंधा है जिसका अवलंबन करके जीव प्रेम मूर्ति तक पहुंचने का मार्ग पा सकता है। सूफी शब्द रूपों में उसकी छिपी ज्योति देखकर मुग्ध हो जाते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ संख्या 97। सिद्ध व्यापिनी सहृदयता, संपूर्ण सृष्टि जड़ और चेतन के प्रति सहज मानवीय संबंध एवं रागात्मक लगाव। उदाहरण, यदि कवि सच्चा या शेष सृष्टि के साथ उसके हृदय का पूर्ण सामंजस्य है, उसमें सृष्टि व्यापिनी सहृदयता है, तो उसके सादृश्य विधान में एक बात और लक्षित होगी। वह जिस सदृश वस्तु या व्यापार की ओर ध्यान ले जाएगा, कहीं कहीं उससे मनुष्य को और प्राकृतिक पदार्थों के साथ अपने संबंध की बड़ी सच्ची अनुभूति होगी। जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 108। सेंस व्यंग वस्तु व्यंजित अर्थ संदर्भगत अर्थ प्रसिद्ध काव्य समीक्षक रिचर्ड्स द्वारा निर्दिष्ट प्रथम अर्थ प्रकार। उदाहरण, उन्होंने रिचर्ड्स ने व्यावहारिक समीक्षा प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नामक अपने ग्रंथ में चार प्रकार के अर्थ माने हैं। प्रस्तुत अर्थ या व्यंग्य वस्तु सेंस, व्यंग भाव फीलिंग, वोधव्य की विशेषता टोन और भीतरी उद्देश्य इंटेंशन। चिंतामणि भाग दो पृष्ठ संख्या 164। सेव्य सेवक भाव, परमात्मा हमारा स्वामी है, मैं उसका सेवक हूँ, इस भाव से परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पित होकर भक्ति करना सेवा सेवक भाव की भक्ति है। उदाहरण, ऊपर की चौपाइयों में पति पत्नी की पारस्परिक प्रेम संबंध की बात बताकर सेव्य सेवक भाव पर जोर दिया गया है। जैसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 36। सौंदर्य वस्तु का वह गुण जो मन पर अनुकूल और सुखात्मक प्रभाव डालता है। आचार्य शुक्ल भी सौंदर्य को वस्तु का गुण मानते हैं। उनकी दृष्टि में सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमारी भावना में आने पर हमारी अंतःसत्ता पर अधिकार कर लेती हैं। हम अपने को भूल कर उन्हीं की भावना में लीन हो जाते हैं। जिस वस्तु में अपने में लीन करने की क्षमता जितनी अधिक होती है, वह वस्तु उतनी ही अधिक सुंदर मानी जाती है। आचार्य शुक्ल ने सौंदर्य की व्यापक आधार प्रतिष्ठित किया। वे वस्तु सौंदर्य से आगे बढ़कर भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, कर्म सौंदर्य की व्याख्या भी करते हैं। वे सौंदर्य और मंगल को पर्याय मानते हैं। उनके अनुसार सौंदर्य की मूल अवधारणा विरुद्धों के सामंजस्य में है। जीवन और जगत के बीच सुखात्मक एवं दुखात्मक दोनों ही प्रकार की अनुभूतियों की द्वंद्वात्मक स्थिति पाई जाती है। जहाँ इन दोनों में सामंजस्य होता है, वहीं सौंदर्य होता है। यह सामंजस्य सुख और शांति को साध्य और दुख एवं प्रयत्न को सघन मानकर स्थापित किया जाता है। सुख और शांति के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, दुख या कष्ट झेला जाता है, जो साधना की जाती है उसमें गत्यात्मक सौंदर्य होता है, और सुख एवं शांति के सिद्ध होने पर जो स्थिरता आ जाती है उसमें निष्क्रिय सौंदर्य होता है। वास्तविक सौंदर्य गत्यात्मक डायनेमिक ही होता है। उदाहरण, कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमारे मन में आते ही थोड़ी देर के लिए हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार कर लेती हैं कि उसका ज्ञान ही हवा हो जाता है। हम उन वस्तुओं की भावना के रूप में ही परिणित हो जाते हैं। हमारी अंतःसत्ता की यही तदाकार परिणति सौंदर्य की अनुभूति है। चिंतामणि भाग दो पृष्ठ संख्या 165। स्थायी भाव, चीरकाल तक चित्त में स्थिर रहने वाले विरुद्ध या अविरुद्ध भावों से न दबने या छिपने वाले विभाव आदि से संबंध होने पर रस रूप में व्यक्त होने वाले भावों को स्थायी भाव कहते हैं। रति, हास, शोक, क्रोध, साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद या शम स्थायी भाव माने जाते हैं। उदाहरण हमारे यहाँ रति हास शोक साह भय आश्चर्य जुगुप्सा निर्वेद ये 9 भाव गिनाए गए हैं। ये सब के सब स्थाई भाव कहलाते हैं। स्थाई शब्द से आचार्यों का क्या अभिप्राय है यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। स्थायित्व के 2 अर्थ हैं। किसी एक भाव का एक ही अवसर पर इस आधिपत्य के साथ बना रहना कि उसके उपस्थिति काल में अन्य भाव अथवा मनोवेग उसके शासन के भीतर प्रकट हो, वह ज्यों का त्यों बना रहे। एवं द्वितीय, किसी मानसिक स्थिति का इतने दिनों तक बना रहना कि उसके कारण भिन्न भिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न भाव प्रकट होते रहें। कहने की आवश्यकता नहीं कि आचार्यों का अभिप्राय प्रथम प्रकार के स्थायित्व से है, क्योंकि रति ही एक ऐसी स्थायी है जिसमें द्वितीय प्रकार का दीर्घ काल व्यापी स्थायित्व घटित होता है। शेष में प्रथम प्रकार का स्थायित्व ही पाया जाता है। अतः 8 भावों निर्वेद को अभाव रूप मानकर आचार्य शुक्ल ने अलग कर दिया में से रति भाव ही ऐसा है जो आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से स्थायी है। स्थिर सौंदर्य, स्थितिशील भोग प्रधान जीवन दशाओं में ही सौंदर्य देखना और उनका अंकन करना स्थिर सौंदर्य की अभिव्यक्ति है। आचार्य शुक्ल ने सिद्धावस्था या उपभोग पक्ष को लेकर चलने वाले काव्य में चित्रित जीवन दशाओं के सौंदर्य को स्थिर सौंदर्य माना है। उदाहरण, शैली ने भी काव्य कला का मूल तत्व प्रेम भाव माना था, पर अपने को सुख सौंदर्यमय माधुर्य रूपता का विन्यास किया एवं माधुर्य भाव तक ही बद्ध न होकर प्रबंध क्षेत्र में भी अच्छी तरह घुसकर भावों की अनेक रूपता का विन्यास किया। स्थिर स्टैटिक सौंदर्य और गत्यात्मक डायनेमिक सौंदर्य उपभोग पक्ष और प्रयत्न पक्ष दोनों उनमें पाए जाते हैं। स्थूल एकेश्वरवाद, अनेक देवताओं के स्थान पर सर्वशक्तिमान एक ईश्वर की सत्ता मानना मुसलमानों एवं ईसाइयों का ईश्वर इसी कोटि का है। उदाहरण, ईसाई धर्म में जब स्थूल एकेश्वरवाद के स्थान पर प्राचीन आर्य दार्शनिकों द्वारा प्रतिपादित सर्ववाद पैंथियज्म में लेने की आवश्यकता हुई, तब वह बुद्धि द्वारा प्रस्तुत ज्ञान के रूप में तो लिया नहीं जा सकता, ईश्वर द्वारा रहस्यात्मक ढंग से प्रेषित ज्ञान के रूप में ही लिया जा सकता था। गोस्वामी तुलसीदास, पृष्ठ संख्या 4। स्मरण, जब पहले अनुभव की गई या देखी गई वस्तु के सदृश कोई वस्तु सामने आती है तो उसे देखकर पूर्वानुभूत वस्तु का स्मरण होता है, तब स्मरणालंकार होता है। स्मित, हास्य के 6 भेदों में से एक है। यह उत्तम प्रकृतिगत हास्य है। इसमें नेत्रों का ईषद विकास या अधरों का हल्का स्पंदन मात्र होता है। उदाहरण, गोस्वामी जी का यह हास्य मर्यादा के साथ स्मित हास है, बड़े लोगों का हास है। गोस्वामी तुलसीदास, पृष्ठ संख्या 63। स्मृत रूप विधान, प्रत्यक्ष देखी हुई वस्तुओं का मन के भीतर स्मरण द्वारा ज्यों का त्यों मूर्त होना स्मृत रूप विधान है। उदाहरण, जिस प्रकार हमारी आंखों के सामने आए हुए कुछ व्यापार हमें रसात्मक भावों में मग्न करते हैं, उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष की हुई कुछ परोक्ष वस्तुओं का वास्तविक स्मरण भी कभी कभी रसात्मक होता है। रसमीमांसा, पृष्ठ संख्या 276। स्मृति दशा, जगत के मनोरम रूपों व्यापारों स्थितियों का ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से अनुभव होने के बाद उन्हें पुनः स्मरण करने की दशा स्मृति दशा है। उदाहरण, बहुत सी कविता अनुभूति दशा में नहीं होती, स्मृति दशा में होती है। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 104। स्मृत्याभास कल्पना, पहले सुनी पढ़ी या अनुमान द्वारा निश्चित बातों की स्मृति का आभास देने वाली कल्पना स्मृत्याभास कल्पना है। स्रग्धरा, यह 21 वर्णों का छंद है। इसमें क्रमशः मगड़, रगड़, भगड़, नगड़, यगड़, यगड़, यगड़ का विधान होता है। 7-7-7 पे यति होती है। उदाहरण, इस बात का अनुभव तो बहुत से लोगों ने किया होगा कि संस्कृत में मंदाक्रांता, स्रग्धरा इत्यादि वर्ण वृत्तों में नाच सौंदर्य की पराकाष्ठा है। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 147। स्वगत भेद, वेदांत मत से एक वस्तु से एक अंग का दूसरे अंग से भेद स्वगत भेद कहलाता है। जैसे गाय के सिंग और पूंछ में जो भेद है वह स्वगत भेद है। उदाहरण, शुद्ध ब्रह्म स्वगत सजाति विजातीय 3 भेदों में से रहित है। स्वच्छंदता आंदोलन, रोमांटिक मूवमेंट, यूरोप में क्लासिकल साहित्यिक प्रवृत्तियों के विरोध में व्यक्तिवादी चेतना को महत्व देने वाला साहित्यिक आंदोलन, सर्वप्रथम जर्मन आलोचक श्लेगेल ने रोमांटिक स्वच्छंदतावादी शब्द का प्रयोग क्लासिकल के विपरीत अर्थ में किया। स्वच्छंदतावाद परंपरागत नैतिक मूल्यों को स्वीकार नहीं करता। इसके अनुसार उत्प्रेरित अवस्था में कर्तृ मानस में जो भावोत्तेजक आवेग उत्पन्न होते हैं उनकी स्वच्छंद अभिव्यक्ति ही काव्य है। क्लासिकल साहित्यकार नैतिक सामाजिक मूल्यों का महत्व देते हुए वैयक्तिक आवेगों से मुक्त होकर सार्वभौम आदर्शवादी चेतना को व्यक्त करता है। स्वच्छंदतावाद वैयक्तिक भावावेग को अधिक महत्व देता है और परंपरागत कला मूल्यों की अपेक्षा कर स्वच्छंद काव्यधारा प्रवाहित करता है। जर्मनी से चलकर फ्रांस होता हुआ यह कला आंदोलन इंग्लैंड पहुंचा था। 19वीं सदी के वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स, वायरन एवं काउपर आदि कवियों की स्वच्छंदतावादी कहा गया। हिंदी के छायावादी और रहस्यवादी कवि स्वच्छंदतावादी से प्रभावित हैं। उदाहरण, जिस व्यक्तिवाद का ऊपर उल्लेख हुआ उसमें स्वच्छंदता के आंदोलन के उत्तर काल से बड़ा ही विकृत रूप धारण किया। यह व्यक्तिवाद यदि पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाए तो कविता लिखना व्यर्थ ही समझिए। रश्मि मानसा, पृष्ठ संख्या 321। स्वतः संभवी, स्वतः संभव होने वाला वह काव्यार्थ जो कवि के कथन मात्र से सिद्ध हो, वरन बाह्य संसार में स्वतः जिसकी संभावना हो, यह कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध वस्तु की भांति मात्र कल्पना में संभव न होकर वास्तविक जगत में भी संभव होती है। स्वप्न, सुप्तावस्था में प्रिय पात्र या शत्रु के साक्षात्कार के सूचक मानसिक अवस्था स्वप्न है। उदाहरण, रति, क्रोध, भय इत्यादि में केवल उसी को स्वप्न में देखना संचारी होगा जिसे रति या भय हो अथवा जिस पर क्रोध हो। स्वभावोक्ति, वह अलंकार जिसमें बालक प्रभृति विविध पदार्थों के स्वभाव, स्वरूप, चेष्टा आदि क्रिया का वर्णन किया जाता है। इसे अलंकारों की श्रेणी में इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें वस्तु स्वभाव का जो वर्णन होता है वह कवि की सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता के कारण चमत्कार पूर्ण होता है। सूक्ष्म वस्तु स्वभाव यथा वर्णनम स्वभावोक्ति। स्वर मैत्री, नाद सौंदर्य के सामंजस्य की दृष्टि से की गई शब्द योजना स्वर मैत्री है। स्वरूप बोध, उपमेय के स्वरूप का बोध कराना। जहाँ उपमेय का कोई अमूर्त या अगोचर तत्व होता है वहाँ उसके स्वरूप का बोध कराने के लिए उपमान का विधान सादृश्य के आधार पर करना आवश्यक होता है। स्वरूप संबंध, अनुरूपता के आधार पर स्थापित संबंध स्वरूप संबंध है। स्व शब्द वाच्यत्व दोष, जब किसी स्थायी भाव या रस का उल्लेख उसके वाचक शब्द द्वारा किया जाता है तो वह सब स्व शब्द वाच्यत्व दोष कहलाता है। संभव है कि कुछ लोगों ने रिसोहे के स्व शब्द वाच्यत्व दोष दिखाई पड़े, पर अनुभव आदि द्वारा पूर्ण व्यंजना हो जाने पर विशेषण रूप में भाव का नाम आ जाना दोष नहीं कहा जा सकता। गोस्वामी तुलसीदास, पृष्ठ संख्या 64। स्वानुभूति, प्रातिभिज्ञान, स्वयं प्रकाश ज्ञान। आचार्य शुक्ल स्वानुभूति को इंट्यूशन का पर्याय मानते हैं। उन्होंने वर्गसांक को उद्धृत करके अपने कथन की पुष्टि की है। स्वानुभूति निरूपणी, कवि की निजी अनुभूति का निरूपण करने वाली स्वानुभूति निरूपणी होती है। स्वानुभूतिवाद, इंट्यूशन, शुद्ध मन द्वारा प्रेरित भावना की उमंग में भक्ति या साधक को ईश्वर के स्वरूप का जो बोध होता है उसका आधार बौद्धिक नहीं होता वरन स्वानुभूति को आध्यात्मिक ज्ञान का साधन मानने वाले सिद्धांत स्वानुभूतिवाद है। स्वाभाविक रहस्य भावना, गोचर स्मरणीय दृश्यों के आधार पर किसी अज्ञात एवं रमणीय दृश्य की सहज कल्पना। वह कल्पना मानव के अज्ञात के प्रति सहज राग की प्रवृत्ति को तुष्ट करती है। उदाहरण, स्वाभाविक रहस्य भावना बड़ी रमणीय और मधुर भावना है, इसमें संदेह नहीं। रसभूमि में इसका एक विशेष स्थान हम स्वीकार करते हैं। चिंतामणि भाग 2, पृष्ठ संख्या 130।